पृष्ठ संख्या 232 चतुर्दश अध्याय का छठवां भाग। हेगल के अनुसार निरपेक्ष विज्ञान पहले अमूर्त विज्ञान के रूप में प्रतीत होता है, फिर बाह्य विज्ञान या प्रकृति के रूप में, और फिर समन्यात्मक मूर्त विज्ञान या आत्म तत्व के रूप में। इन तीनों अर्थात अमूर्त विज्ञान, बाह्य विज्ञान और मूर्त विज्ञान के आधार पर हेगल के दर्शन के तीन खंड हैं। प्रथम खंड तर्कशास्त्र या लॉजिक है, जो अमूर्त विज्ञान का अध्ययन करता है। द्वितीय खंड प्रकृति विज्ञान या फिलॉसफी ऑफ नेचर है, जो बाह्य विज्ञान का अध्ययन करता है। तृतीय खंड आत्मविज्ञान फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट है, जो मूर्त विज्ञान का अध्ययन करता है। अब हम इन तीनों खंडों का क्रमशः वर्णन करेंगे। तर्कशास्त्र का विषय है अमूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान से तात्पर्य है सृष्टि के पूर्व निरपेक्ष विज्ञान की स्थिति से, विज्ञान और वस्तु में, चित और सत में, बोध और सत्ता में कोई अंतर नहीं। अतः विज्ञान का अध्ययन वस्तु जगत का अध्ययन है, क्योंकि विज्ञान के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं। हेगल का त्रिक नियम सर्वत्र चलता है। अमूर्त विज्ञान या लॉजिकल आइडिया के तीन मुख्य रूप हैं, सत्ता, बीइंग, स्वरूप, एसेंस, और विज्ञान, नोशन। सत्ता पक्ष है, स्वरूप प्रतिपक्ष है, विज्ञान समन्वय है। सत्ता के भी तीन रूप हैं, गुण, क्वालिटी, परिणाम या क्वांटिटी, और मात्रा, मेजर, जो क्रमशः पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय हैं। स्वरूप के भी तीन रूप हैं, अधिष्ठान, ग्राउंड, प्रतीति, अपीयरेंस और वास्तविकता, एक्चुअलिटी। वास्तविकता के भी तीन रूप हैं, द्रव्य गुण भाव, कार्य कारण भाव और अन्योन्य भाव। विज्ञान के भी तीन रूप हैं, आत्मगत विज्ञान या सब्जेक्टिव नोशन, विषयगत विज्ञान ऑब्जेक्टिव नोशन, और निरपेक्ष विज्ञान आइडिया, जो क्रमशः पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय रूप हैं। हेगल के विज्ञानों से निर्मित इस विशाल दार्शनिक प्रासाद के सूक्ष्म निरीक्षण के चक्कर में न पड़कर हम मुख्य विषयों का ही वर्णन करेंगे। हेगल के त्रिक नियम की सार्वपथनीता अबाध है। विज्ञान की यात्रा में यह सर्वत्र लागू होता है, क्योंकि विकास का आधार यह द्वंद्वमूलक समन्वय ही है। उदाहरण के लिए सत्ता को ले लें। सत्ता की धारणा से ही हमारे ज्ञान का आरंभ होता है। यह अत्यंत व्यापक धारणा है, इसमें कोई वस्तु नहीं बचती। पृष्ठ संख्या 233। जिस वस्तु का भी हम विचार करते हैं उसकी सत्ता कम से कम हमारे ज्ञान में तो है ही, असत की भी कम से कम विचार के रूप में ही सत्ता है। सत्ता की धारणा सबसे व्यापक सामान्य है। सत्ता परम अमूर्त विज्ञान है, किंतु साथ ही शुद्ध सत्ता से कोई अर्थ भी नहीं निकलता। शुद्ध सत्ता निर्विशेष है और निर्विशेष का ज्ञान नहीं होता। अतः केवल सत्ता से हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। अमुक वस्तु है, इस कथन मात्र से उस वस्तु के विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं होता। किसी वस्तु के धर्म या गुण या विशेष जाने बिना उस वस्तु का ज्ञान संभव नहीं। अतः अस्ति में से नास्ति निकल आता है। किसी वस्तु के लिए केवल अस्ति शब्द का प्रयोग उस वस्तु के ज्ञान की दृष्टि से उतना ही निरर्थक है जितना उसके लिए नास्ति शब्द का प्रयोग। हेगल की प्रसिद्ध उक्ति है, शुद्ध सत शुद्ध असत है, अर्थात शुद्ध सत्ता और शुद्ध शून्य में कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों निर्विशेष हैं। अस्ति या बीइंग पक्ष है, नास्ति या नॉन बीइंग प्रतिपक्ष है। दोनों अपूर्ण हैं। दोनों का विरोध मिटाने के लिए इनका समन्वय आवश्यक है। यह समन्वय परिणति या बिकमिंग, परिणति या परिणाम में अस्ति और नास्ति दोनों का समावेश हो जाता है। परिणाम के लिए एक अपरिणामी अधिष्ठान की आवश्यकता है। यह अधिष्ठान सत या अस्ति रूप है, किंतु विश्व में कोई वस्तु स्थिर नहीं, सब परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन होता है धर्मों या गुणों में या पर्यायों में। अतः पर्याय रूप में वस्तु नास्ति रूप या असत है। इस प्रकार परिणति अस्ति और नास्ति दोनों का समन्वय है, दोनों इसमें विकसित हुए हैं। हेगल के दर्शन का यह प्रथम त्रिक है। अंतिम त्रिक है आत्मगत विज्ञान या जीव या पक्ष, विषयगत विज्ञान या प्रकृति या प्रतिपक्ष, और निरपेक्ष विज्ञान या विशुद्ध आत्म तत्व या समन्वय। यह निरपेक्ष विज्ञान कभी पक्ष नहीं बनता, क्योंकि यह पूर्ण है। शुद्ध सत से लेकर इस निरपेक्ष पूर्ण विज्ञान तक जितने भी विज्ञान हैं वे सब सृष्टि के वास्तविक पदार्थ हैं, और इस पूर्ण विज्ञान को पाने के लिए निरंतर विकासोन्मुख हैं। इन विज्ञानों या कैटेगराइज में उत्कर्षापकर्ष का तारतम्य है, क्योंकि ये सब समन्वयात्मक पूर्ण या एब्सोल्यूट को विविध रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। पृष्ठ संख्या 234। हेगल ने हमारे ज्ञान के तीन स्तर माने हैं। प्रथम स्तर है साधारण ज्ञान का, जिसमें हम विश्व की वस्तुओं को अलग अलग देखते हैं। यह इंद्रिय संवेदन जन्य ज्ञान का स्तर है। द्वितीय स्तर है वैज्ञानिक ज्ञान का, जिसमें हम वस्तुओं के व्यापक नियमों की खोज करते हैं। यह स्तर सविकल्प बुद्धि का है। तृतीय और सर्वोच्च स्तर है दार्शनिक ज्ञान का, जिसमें वस्तुओं को विज्ञानों के रूप में अर्थात अंतर्यामी समन्यात्मक पूर्ण विज्ञान की विविध अभिव्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। यह प्रज्ञा का स्तर है। यह परम तत्व के दर्शन का स्तर है। हेगल के दर्शन का द्वितीय खंड है प्रकृति विज्ञान। प्रकृति वस्तुतः विज्ञान से भिन्न नहीं है, वह विज्ञान का ही बाह्य रूप है। विज्ञान बाह्य रूप में क्यों प्रतीत होता है? इस प्रश्न का उत्तर है मूर्त विज्ञान या समन्यात्मक आत्म तत्व बनने के लिए विज्ञान इतना अशक्त नहीं कि वह अपने अमूर्त रूप में ही रहे, वह बाह्य प्रकृति का रूप भी लेता है, ताकि वह विषयी और विषय, ज्ञाता और ज्ञेय के द्वैत से ऊपर उठकर अपने समन्यात्मक आत्मरूप का साक्षात कर सके। अमूर्त विज्ञान इसलिए बाह्य विज्ञान बनता है कि उसके द्वारा वह मूर्त विज्ञान बन सके। विज्ञान इसलिए बाहर जाता है कि वह उत्कृष्ट होकर भीतर लौटे। जो व्यक्ति विदेश घूम आता है, वह अपने देश को और अच्छी तरह से जान लेता है। प्रकृति में भी द्वंद मूलक समन्वय है। प्रकृति के तीन रूप हैं, जड़ रूप, रासायनिक रूप और प्राण रूप, जो क्रमशः पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय है। जड़ रूप सन्मात्र है, उससे गति उत्पन्न होती है, जैसे सत्ता से परिणाम होता है। जड़ रूप में यांत्रिकता का साम्राज्य है। इस रूप में चैतन्य पूर्णतया सुप्त है। धीरे धीरे चैतन्य या विज्ञान का स्फुरण होने लगता है और जड़ रूप रासायनिक रूप में विकसित होता है। इस रूप में गुणगत भेद उत्पन्न होते हैं। इससे पहले जड़ रूप में केवल परिणाम भेद थे। अब प्रकाश, ताप, विद्युत आदि शक्तियों का आविर्भाव होता है। जड़ रूप और रासायनिक रूप का समन्वय होता है प्राण रूप में। अब वनस्पति सृष्टि का विकास होता है। फिर वनस्पति सृष्टि से पशु सृष्टि का विकास होता है। पशु जगत में प्राण के साथ साथ संवेदन शक्ति का भी आविर्भाव होता है और विज्ञान के आविर्भाव का मार्ग तैयार हो जाता है। पृष्ठ संख्या 235। पशु जगत का सर्वोच्च रूप मानव शरीर है। वहां प्रकृति का विकास पूर्ण हो जाता है और चित शक्ति का विकास प्रारंभ होता है। अब हम हेगल के दर्शन के तृतीय खंड पर आते हैं। यह है आत्मविज्ञान। यह चित शक्ति का जगत है। चित शक्ति के तीन रूप हैं, विषयी विज्ञान, विषय विज्ञान और निरपेक्ष विज्ञान। चित्त शक्ति का विकास मानव जीवन के विकास का इतिहास है। अमूर्त विज्ञान प्रकृति विज्ञान को साथ लेकर मूर्त विज्ञान के रूप में विकसित होता है। आत्मा मानव शरीर में अधिष्ठित रहकर किस प्रकार निरपेक्ष विज्ञान की ओर विकसित होती है, यह इस आत्मविज्ञान का विषय है। यह मानव की संस्कृति और सभ्यता का क्रमिक विकास है। पहले विषयी विज्ञान या सब्जेक्टिव स्पिरिट पर विचार करें। यह विज्ञान का जीवनिष्ठ रूप है। मानव के व्यक्तित्व में चेतना और स्वतंत्रता अर्थात ज्ञान और संकल्प मुख्य है। जीव ज्ञाता है और संकल्प सृष्टि में स्वतंत्र है। यह शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता है। अपने संकल्प के अनुरूप सृष्टि का निर्माण करने का उसमें सामर्थ्य है, किंतु सृष्टि के आदि काल में मानव की चित्त शक्ति और संकल्प शक्ति विकसित नहीं थी। उस समय सहज प्रवृत्तियां या इंस्टिंक्ट्स और मनोवेग या इमोशंस मानव पर शासन करते थे। फलतः व्यक्तिगत जीव की सुख सुविधा मानव का एकमात्र लक्ष्य थी। जैसे जैसे चित्त शक्ति का विकास होता गया, वैसे वैसे ही मानव ने अन्य व्यक्तियों की चेतना और स्वतंत्रता स्वीकार की। इस प्रकार व्यक्ति चैतन्य से समाज चैतन्य का विकास हुआ। विषय विज्ञान या ऑब्जेक्टिव स्पिरिट का अर्थ है समाज चैतन्य या समष्टि चैतन्य। इस चैतन्य के कारण अधिकार और कर्तव्य की धारणाओं का विकास हुआ। इन धारणाओं पर सामाजिक नियम आश्रित है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। समष्टि चैतन्य के तीन रूप ये हैं: अधिकार या राइट, नैतिक चेतना मोरेलिटी और सामाजिक संस्थाएं सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो क्रमशः पक्ष प्रतिपक्ष और समन्वय है। अधिकार की भावना से संपत्ति रक्षा और उसका आदान प्रदान तथा अपराधों के लिए दंड नीति का प्रादुर्भाव होता है। अधिकार भावना के बाद सदसद विवेक बुद्धि का उदय होता है और उसके कारण नैतिक चेतना जागृत होती है। इस नैतिक चेतना के कारण व्यक्ति और समाज के द्वंद्व का समन्वय होता है, किंतु नैतिक चेतना का पूर्ण विकास तब होता है जब उसके अनुरूप सामाजिक संस्थाओं का भी विकास हो। पृष्ठ संख्या 236। ये संस्थाएं हैं परिवार, नागरिक समाज और राज्य तंत्र। विवाह निर्मित परिवार के बिना समाज और समाज के बिना राज्य तंत्र संभव नहीं। परिवार की स्थिति समाज के लिए और समाज की स्थिति राज्य के लिए है। समाज का लक्ष्य व्यक्तियों का सुख है और राज्य का लक्ष्य निरपेक्ष विज्ञान का आत्मलाभ। इस आदर्श के लिए राज्य व्यक्तिगत लाभ का बलिदान कर सकता है। प्रजातंत्र की अपेक्षा राजतंत्र अधिक उत्तम है। उन्नत समाजों और उन्नत राज्यों को अधिकार है कि वे कम उन्नत समाजों और राज्यों को अपने अधिकार में ले लें। मानव जात का इतिहास असंबद्ध घटनाओं का समूह नहीं है, वह सभ्यता और संस्कृति के क्रमिक विकास का इतिहास है। इतिहास में भी द्वंद्व नियम का शासन है। इतिहास का विकास आदर्श परिवार, आदर्श समाज और आदर्श राज्य की ओर है। आदर्श राज्य आदर्श होने के कारण सर्वत्र है और कहीं नहीं है। विभिन्न ऐतिहासिक राज्य इस आदर्श राज्य की न्यूनाधिक अभिव्यक्ति है। परवर्ती सभ्यता और संस्कृति पूर्ववर्ती सभ्यता और संस्कृति से अधिक उन्नत होती है। सभ्यता और संस्कृति का नेतृत्व औन्नत जातियों से उन्नत जातियों के हाथों में जाता रहता है। विभिन्न राज्यों के संघर्ष और युद्ध वस्तुतः विचारों या आदर्शों के संघर्ष हैं। तोपों के पीछे विचारों का युद्ध रहता है। हेगल अपने समय के जर्मन राज्य को सबसे अधिक विकसित राज्य मानते थे। एशिया के संबंध में उनके विचार बड़े क्षुद्र थे। चित्त शक्ति का विकास आदर्श राज्य में जाकर समाप्त नहीं हो जाता। आदर्श राज्य में भी नियंत्रण रहता ही है। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति निरपेक्ष विज्ञान या एब्सोल्यूट स्पिरिट में होती है। इस निरपेक्ष विज्ञान के तीन रूप हैं, कला, धर्म और दर्शन। कला निरपेक्ष विज्ञान की प्रथम अभिव्यक्ति है। कलाओं में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और काव्य आते हैं। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला वस्तुनिष्ठ है और संगीत तथा काव्य आत्मनिष्ठ। कला पक्ष है संगीत प्रतिपक्ष और काव्य समन्वय काव्य कला का सर्वोच्च रूप है। काव्य का बाल्यकाल महाकाव्य में, वयह संधि गीत काव्य में और यौवन नाटक में अव्यक्त होता है। नाटक काव्य का सर्वोच्च रूप है। पृष्ठ संख्या 237। कला के ऊपर धर्म का स्थान है। कलात्मक अनुभूति का सर्वोच्च रूप धार्मिक अनुभूति है। धर्म के मुख्य तत्व हैं ईश्वर, जीव और उनका संबंध। पूर्वी धर्मों में ईश्वर का प्राधान्य है। यूनानी धर्म में जीव का प्राधान्य है। ईसाई धर्म में ईश्वर और जीव का समन्वय ईसा मसीह के रूप में हुआ है। अतः ईसाई धर्म सर्वोत्तम है। यह हेगल की मान्यता है। धर्म के ऊपर दर्शन का स्थान है। धर्म रूढ़िवाद से ग्रस्त हो जाता है। दर्शन में चेतना के स्वातंत्र का पूर्ण विकास होता है। कला और धर्म में कल्पना प्रधान रहती है। दर्शन में विज्ञान का प्राधान्य है। कला पक्ष है, धर्म प्रतिपक्ष है। दर्शन के विकास में भी द्वंद्व नियम लागू रहा है। दर्शन का उत्तरोत्तर विकास होता गया है और हेगल के अनुसार उनके दर्शन में परम तत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। हेगल का यह निरपेक्ष पूर्ण विज्ञान समन्वय की चरम सीमा है। यह स्वयं पक्ष नहीं बनता क्योंकि यह पूर्ण है, यह पूर्ण स्वचेतन है। इसमें विषयी और विषय का, ज्ञाता और ज्ञेय का, जीव और जगत का द्वैत परस्पर विरोध के रूप में नहीं रहता। यह द्वैत इसके स्वरूप भूत अद्वैत का विशेषण बनकर रहता है। यह पूर्ण विशिष्टाद्वैत रूप है। विश्व के समस्त पदार्थों में यह अंतर्यामी है। समस्त विश्व इसका शरीर है। यह विश्व की आत्मा है। यह अवयवी, अंगी, मूर्त, सामान्य, समष्टि, पूर्ण व्यक्ति, पूर्ण स्वचेतन, पूर्ण विशिष्टाद्वैत है। विश्व के समस्त पदार्थ इसके जीवित अवयव या अंग हैं और न्यूना अधिक रूप में इसकी अभिव्यक्ति करते हैं। समस्त विज्ञान इस निरपेक्ष विज्ञान के विकास के विविध स्तर हैं और सोपानवत क्रमबद्ध हैं। निरपेक्ष विज्ञान समस्त विज्ञानों में अंतर्यामी है। यह उनको अनुप्राणित करता है। यह उनकी गति, प्रगति, क्रिया, जीवन, वृद्धि, विकास का कारण है। निरपेक्ष विज्ञान स्वयं विश्व विकास रूप है। यह स्थिर और अगतिशील नहीं है। यह जीवित तत्व है। स्वयं प्रगति रूप होते हुए भी यह समस्त प्रगत का मूल स्रोत है। यह सब विज्ञानों का समुदाय मात्र नहीं है। ऐसा होता तो यह भी सापेक्ष हो जाता। यह पूर्ण और निरपेक्ष है और सब विज्ञानों का अंतर्यामी आत्मा है। यह सब विज्ञानों का आदर्श है। प्रत्येक विज्ञान इसकी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। यह विज्ञानों में ही है। विज्ञानों से ऊपर या भिन्न नहीं है। जीव और जगत रूपी समस्त विश्व इस पूर्ण विज्ञान के अंतर्गत है। कोई वस्तु इससे भिन्न या पृथक नहीं। समस्त विज्ञान इसके विशेषण या अंग हैं। सापेक्ष विज्ञानों में और इस निरपेक्ष विज्ञान में जीवित संबंध है। समस्त विज्ञान इससे पृथक सिद्ध नहीं होते, अतः वे अपृथक सिद्ध कहलाते हैं। पृष्ठ संख्या 338। उनकी सत्ता निरपेक्ष विज्ञान के कारण ही है, उसमें पृथक नहीं। जीव और जगत का द्वैत स्वचेतन की पूर्णता में समवेष्ट हो जाता है। समस्त विज्ञान इस निरपेक्ष विज्ञान में प्रकट और उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है और यह निरपेक्ष विज्ञान समस्त विज्ञानों में गुप्त रूप से अनुस्थित है। विकास का अर्थ इस गुप्त स्वरूप को प्रकट रूप में व्यक्त करना है। समस्त भेद इस निरपेक्ष विज्ञान के अंतर्गत है, इससे बाह नहीं। स्वचेतन में ज्ञाता और ज्ञेय का, विषयी और विषय का, जीव और जगत का पूर्ण ऐक्य हो जाता है, फिर भी भेद नष्ट नहीं होता, क्योंकि इस विकास में कोई वस्तु पीछे नहीं छूटती। भेद विशेषण रूप से विद्यमान रहकर इस अभेद को ही पुष्ट करता है, जो स्वरूप विज्ञानों में अपूर्ण रूप से विद्यमान है। वही स्वरूप इस निरपेक्ष विज्ञान में अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। अतः यह निरपेक्ष विज्ञान समस्त विश्व का आत्मलाभ है। विश्व के प्रत्येक अणु अणु में इसकी ज्योति प्रकाशित हो रही है। यह स्वप्रकाश है और समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। किसी भी अपूर्ण वस्तु को पूर्ण मानते ही उनकी अपूर्णता फट पड़ती है और उसमें से उसका विरोधी निकल पड़ता है। पक्ष और प्रतिपक्ष के विरोध को शांत करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है, किंतु यह समन्वय भी अपूर्ण होने के कारण फिर पक्ष बन जाता है और अपने प्रतिपक्ष को जन्म देता है। फिर समन्वय की आवश्यकता होती है और इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हम निरपेक्ष विज्ञान पर नहीं पहुंच जाते। निरपेक्ष विज्ञान पूर्ण समन्यात्मक होने के कारण फिर पक्ष नहीं बनता। पार्मेनाइडीज का परम तत्व सन्मात्र होने के कारण शून्यवत था। वह स्थिर और प्रगति रहित स्थाणुवत था। हेरेक्लाइट्स ने केवल परिवर्तन और भेद को स्वीकार किया। वे यह भूल गए कि परिवर्तन और भेद के लिए अपरिणामी तत्व और अभेद की अपेक्षा रहती है। प्लेटो और एरिस्टोटल ने भेद में अनुचित अभेद की कल्पना तो की, किंतु वे इसका सफल प्रतिपादन नहीं कर सके। प्लेटो का परमार्थ पर हो गया और एरिस्टोटल का दर्शन द्वैतवाद में फंस गया। स्पिनोजा का निर्विशेष परम तत्व सिंह की गुहा के समान, जिसमें पशुओं के अंदर जाने के पद चिन्ह तो दिखाई देते हैं किंतु बाहर आने के नहीं, यह परम तत्व समस्त विश्व का भक्षण कर जाता है। इसमें भेद और प्रपंच को कोई स्थान प्राप्त नहीं। लाइबनिट्ज ने विकासशील विज्ञान को तो अपनाया, किंतु परमार्थ को खंडशह करके बिखेर दिया। प्रत्येक चिदड़ू अपने सीमा में ही पूर्ण मान लिया गया और गुणगत भेद का निराकरण करने से चिदड़ुओं की अपनी कोई विशेषता न रह सकी। पृष्ठ संख्या 239। इनके पारस्परिक संबंध का ठीक विवेचन नहीं हो सका। लॉक, बर्कले और ह्यूम के इंद्रिय अनुभववाद ने विज्ञान को प्रतिबिंब मात्र मानकर क्रमशः अज्ञेयवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और संदेहवाद की शरण ली। कांट ने बुद्धिवाद और इंद्रिय अनुभववाद के संघर्ष को तो मिटा दिया, किंतु वे स्वयं द्वैतवाद और अज्ञेयवाद के पंजे में फंस गए। प्रज्ञा को उन्होंने नियामक मात्र मानकर इंद्रिय संवेदनों से बांध दिया। संवेदन भी वस्तुतः विज्ञान के ही क्षीण रूप हैं। प्रज्ञा द्वंद्वात्मक विरोधों को जन्म देती है, किंतु प्रज्ञा में इन विरोधों का समन्वय करने की भी शक्ति है। कांट इस समन्वय शक्ति को भूल गए। उनके बुद्ध विकल्प खोखले सांचे ही रह गए, जबकि वास्तव में वे विज्ञान विकास के विविध स्तर हैं। फिक्टे अपने नैतिकवाद में ही मस्त रहे हैं और प्रकृति को बाधा मानकर उस पर विजय प्राप्त करना ही मानव की संकल्प शक्ति का ध्येय मान लिया गया। सेलिंग का निर्विशेष परम तत्व उस काल रात्रि के समान है जिसमें सब गायें काली दिखाई देती हैं। इसमें भेद को कोई स्थान नहीं। हेगल के अनुसार उनका दर्शन इन सब कमियों को दूर करता है और इन सब विरोधी मतों का पूर्ण समन्वय है। निरपेक्ष विज्ञान पहले अमूर्त विज्ञान रूप में प्रतीत होता है। अमूर्त विज्ञान या आइडिया इन इट्सेल्फ ज्ञाता जीव का समष्टि रूप है। यह अपूर्ण है और ज्ञेय विषय की ओर इंगित करता है। तब यह बाह्य प्रकृति का रूप लेता है। आइडिया आउटसाइड इट्सेल्फ जो विषय जगत का समष्टि रूप है। पहले इसकी प्रतीति जड़ के रूप में होती है, फिर वनस्पति जगत के रूप में। इसमें प्राण शक्ति का स्फुरण होता है और पशु जगत में प्राण शक्ति संवेदन शक्ति का रूप लेती है तथा विज्ञान के किनारे तक पहुंच जाती है। तब अमूर्त विज्ञान और बाह्य विज्ञान का समन्वय स्वचेतन विज्ञान या मूर्त विज्ञान या आत्म तत्व या आइडिया इन एंड फॉर इट्सेल्फ के रूप में प्रारंभ होता है। इस समय चेतना और स्वतंत्रता का विकास होता है। यह विकास मानव सभ्यता और संस्कृति में प्रतिफलित होता है। विज्ञान का द्वंद्व मूलक समन्वय इतिहास में भी लागू होता है। विज्ञान का विकास अधिकार रक्षा, नैतिक चेतना और सामाजिक संस्थाओं के रूप में होता है। सामाजिक संस्थाएं परिवार, समाज और राष्ट्र के रूप में विकसित होती हैं। फिर कला, धर्म और दर्शन का विकास होता है। दर्शन इस निरपेक्ष पूर्ण विज्ञान की पूर्ण अभिव्यक्ति है। दर्शन आत्मविज्ञान है और आत्मा जीव तथा प्रकृति का समन्वय है। पृष्ठ संख्या 240। प्रकृति में इतनी शक्ति नहीं कि विज्ञान के विकास को रोक सके। उसे विज्ञान के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ता है और विज्ञान भोग्य बनकर वह कृतार्थ होती है। जब विज्ञान प्रकृति का आलिंगन करके अपने समन्यात्मक स्वरूप की ओर लौटता है तो वह मूर्त विज्ञान बन जाता है। यह वह अमूर्त विज्ञान नहीं रहता जिसने इस विकास यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। यह अब समन्यात्मक स्वचेतन विज्ञान है। इसने आत्मलाभ कर लिया है। वह निरपेक्ष पूर्ण विज्ञान है। अमूर्त विज्ञान बालक के समान था। मूर्त विज्ञान वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध पुरुष के समान है। यदि बालक और वृद्ध एक ही सत्य सिद्धांत का प्रतिपादन करे तो भी उस प्रतिपादन में भारी अंतर है। बालक उस सत्य का उच्चारण मात्र करता है। उसने उस सत्य के वास्तविक अर्थ को अनुभूत नहीं किया है। किंतु जब वृद्ध उस सत्य का प्रतिपादन करता है तो उसके जीवन भर का अनुभव उसमें अंतर्निहित होता है। इसी प्रकार समस्त विज्ञान इस निरपेक्ष विज्ञान की अपने तुतले शब्दों में अपूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं और यह निरपेक्ष विज्ञान समस्त विज्ञानों की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह हेगल के दर्शन का सार है। हेगल का प्रभाव परवर्ती पाश्चात्य दार्शनिकों पर किसी न किसी रूप में पड़ा है। हेगल के बाद पाश्चात्य दर्शन हेगल का खंडन या मंडन किए बिना आगे नहीं सरक पाया है। इस प्रभाव को बताने के लिए सारे समसामयिक पाश्चात्य दर्शन का वर्णन करना होगा, जो यहाँ शक्य नहीं। समसामयिक पाश्चात्य दर्शन एक स्वतंत्र ग्रंथ का विषय है। हेगल का प्रभाव पाश्चात्य दर्शन के ज्ञाता कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय दर्शन में भी घसीट लिया गया है। हेगल के निरपेक्ष विज्ञान की तुलना शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के ब्रह्म से प्रायः की जाती है। अतः इस विषय का स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो गया है। यह सत्य है कि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के कुछ सिद्धांतों से हेगल सहमत हैं, किंतु इनमें मार्मिक मतभेद भी है जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्वयं हेगल को भारतीय दर्शन का कोई ज्ञान नहीं था। एशिया भर की सभ्यता, संस्कृति और कला, धर्म एवं दर्शन को हेगल हीन दृष्टि से देखते थे और इस विषय में उनके विचार क्षुद्र ही नहीं, हास्यास्पद भी हैं। शंकर वेदांत, रामानुज वेदांत और हेगलिक दर्शन के मुख्य सिद्धांतों की समानता और विभिन्नता का दिग्दर्शन प्रस्तुत किया जाता है। पृष्ठ संख्या 241। हेगल परम तत्व को निरपेक्ष पूर्ण विज्ञान रूप मानने में और जीव जगत रूप समस्त विश्व को इस पूर्ण विज्ञान की अभिव्यक्ति मात्र मानने में शंकराचार्य से सहमत हैं, किंतु इस अभिव्यक्ति को हेगल विवर्त मात्र नहीं मानते। विश्व अविद्या या माया का प्रपंच मात्र नहीं है। हेगल रामानुजाचार्य से इस विषय में सहमत हैं कि अविद्या परम तत्व के विकास की असली शक्ति है, कि परम तत्व निर्विशेष नहीं है, कि निर्विशेष का कोई ज्ञान नहीं हो सकता, कि सन्मात्र शून्यवत है, कि जीव जगत रूप या चिद चिद रूप अखिल विश्व परम तत्व का विशेषण है कि भेद अभेद के आश्रय पर टिकता है, कि भेद गौण होता है और अभेद मुख्य की परम तत्व पूर्ण विशिष्टाद्वैत और अशेष कल्याण गुण राशि है, कि परम तत्व अखिल विश्व में अंतर्यामी है, कि विश्व शरीर है, अवयव है, अंग है और परम तत्व शरीरी अवयवी अंगीया आत्मा है। किंतु हेगल रामानुजाचार्य के धार्मिक सिद्धांतों से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। हेगल परम तत्व को कभी पर या पुरुषोत्तम नहीं मान सकते। ईश्वर के प्रसाद या करुणा का महत्व, भक्ति मार्ग का प्राधान्य, आत्मनिक्षेप का महात्म्य, पराभक्ति का निर्विकल्प ज्ञान में परिणत होकर मोक्ष का कारण बनना, जगत को बंधन स्वरूप मानना, चित और अचित में सर्वथा पार्थक्य मानना, अचित को चित से भिन्न तत्व मानना, नित्य विभूति और लीला विभूति का भेद, जीवों में परस्पर भेद आदि सिद्धांत हेगल को सर्वथा अमान्य होते। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों श्रुति को सर्वोच्च प्रमाण और निर्विकल्प अनुभूति को परम तत्व मानते हैं। हेगल मानव ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई प्रमाण नहीं मान सकते। निर्विकल्प अनुभूति के हेगल परम शत्रु हैं। उनके अनुसार रहस्यमयी निर्विकल्प अनुभूति को स्वीकार करना मानवेतर बनकर मानवता की जड़ों को कुचल देना है। उनके अनुसार जो दर्शन मानव ज्ञान के अतिरिक्त अन्य श्रुति आदि को प्रमाण मानता है, वह अपनी अशक्ति को स्वीकार करता है। हेगल परम तत्व को कभी अनिर्वचनीय, अज्ञेय या अवांग मनोगोचर नहीं मान सकते। हेगल शंकराचार्य के परम ब्रह्म को भी पार्मेनाइडीज, स्पिनोजा या सेलिंग के परम तत्व के समान काल्पनिक बताकर उसका प्रबल खंडन करते। शंकराचार्य के अनुसार हेगल का परम तत्व वास्तविक परमार्थ न होकर मानव निर्मित या हेगल कल्पित परम तत्व होता। बिना निर्विकल्प अनुभूति को माने तत्व साक्षात्कार नहीं हो सकता। स्वचेतन और समन्यात्मक अनुभूति हमारी सविकल्प बुद्धि की सर्वोच्च अनुभूति है, किंतु यह परम तत्व नहीं है। परम तत्व इसके भी परे है। वह विशुद्ध स्वानुभूति का, जिसमें किसी प्रकार के द्वैत प्रपंच का लेश मात्र स्पर्श भी न हो, विषय है। पृष्ठ संख्या 242। यही वास्तविक आत्मज्ञान है। हेगल का आत्म अविद्या संवलित जीव है, जो विकास के चक्कर में फंस रहा है। इस अविद्या चक्र से छुटकारा पाने पर ही तत्व का साक्षात दर्शन हो सकता है। दर्शन इस स्वानुभूति का साधन मात्र है। हेगल इस स्वानुभूति की कल्पना तक नहीं कर सके। चतुर्दश अध्याय समाप्त। साथ ही चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित पाश्चात्य दर्शन भी पूर्ण होता है। धन्यवाद।